मिस्टर शेरगिल ने इशारा किया और सबने अपनी गन्स नीचे कर ली। वो लंबे लंबे डग भरते हुए नित्या के पास आए, उसे अनीता जी से दूर किया और उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगे। उनके पीछे पीछे गार्ड्स भी जाने लगे। रोती बिलकती नित्या मानव और अनीता जी को देख रही थी। अनीता जी को उसकी हालत पर तरस आ गया, उनकी भी आंखें नम हो गई, लेकिन मानव ने अब भी ना कुछ कहा, ना ही पलटकर एक बार भी नित्या को देखा। मिस्टर शेरगिल ने नित्या को जबरदस्ती कार में बिठाया, खुद घूमकर दूसरे तरफ जाने लगे थे कि एकदम से मानव उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनके आगे बढ़ते कदम रुक गए। त्योरियां चढ़ाए वो गुस्से भरी नजरों से उसे घूरने लगे। कुछ कहना है मुझे आपसे, इतना सब होने और सुनने के बाद भी तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बचा है? मिस्टर शेरगिल ने तलखी से कहा। मानव भावहीन सा उनके सामने खड़ा था। उसने शांत स्वर में कहा, हाँ, बात नित्या से जुड़ी है और करनी जरूरी है। मिस्टर शेरगिल ने गौर से उसे देखा। मानव ने गहरी सांस ली और उनकी आंखों में आंखें डालते हुए गंभीर स्वर में बोला, नित्या आपकी बेटी है। आप उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उससे अपनी बात तो मनवा सकते हैं, लेकिन उसके दिल में वो इज्जत नहीं पा सकते जो उसके पिता होने के नाते आपको मिलनी चाहिए। मैं पर्सनली आपको बिल्कुल नहीं जानता। नित्या से आपका किस तरह का रिश्ता है और क्यों, इस बारे में भी मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। नित्या ने मुझे अपनी फैमिली के बारे में कुछ बातें बताई थी, लेकिन आज पता चला कि वो सब झूठ था। लेकिन ये बात झूठ नहीं थी कि नित्या पर शादी का प्रेशर बनाया जा रहा था और उस अनचाही शादी से बचने के लिए वो घर छोड़कर भागी। शायद वो जानती थी कि अगर आपको उसके यहाँ होने का पता चलेगा तो आप उसे वापस वहीं ले जाएंगे, इसलिए वो आपसे छुप रही थी। मुझे सब झूठ कहा। मुझे आपसे बस इतना कहना है कि आप उसके पेरेंट हैं, उसके भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। ये जिंदगी उसकी है, तो उसे किससे शादी करनी है, किसके साथ अपनी लाइफ बितानी है, ये फैसला लेने का हक भी उसका होना चाहिए। आप उसे अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक नहीं भी देते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, उसकी मर्जी पूछें और जो भी डिसीजन लें उसकी मर्जी को ध्यान में रख कर लें, क्योंकि उस डिसीजन पर उसकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। अब तुम मुझे बताओगे कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या नहीं? अब उसकी जिंदगी से जुड़े फैसले मुझे तुमसे पूछकर लेने होंगे। गुस्से से मिस्टर शेरगिल की बांह और माथे की नसें तन गईं। जितने गुस्से में वो थे, मानव ने उतनी ही आराम से जवाब दिया, नहीं, ना मैं कुछ बताऊंगा और ना ही आपको नित्या की लाइफ से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत है, क्योंकि वो मेरी कुछ नहीं लगती। लेकिन आप तो पिता हैं उसके, आपको तो उसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आज अपनी जिद पूरी करने के लिए आप जोर जबरदस्ती या मजबूर करके उसकी शादी अपनी पसंद के लड़के से करवा भी देंगे तब भी वो कभी खुश नहीं रहेगी। आप अपने तरफ से अपने जैसे अमीर और खानदानी लोगों को ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन क्या फायदा ऐसी दौलत शोहरत का जब उससे आपकी बेटी खुश ही नहीं होगी? क्या करेंगे आप ऐसी इज्जत का जब अपनी बेटी की नजरों में आप अपनी इज्जत खो देंगे? मेरा आपसे या नित्या से कोई रिश्ता नहीं है। मैं बस इंसानियत के नाते आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नित्या को समझिए। वो एक बार घर से भाग चुकी है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उस पर प्रेशर बनाया। उसके साथ कुछ भी हो सकता था, उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे मैं मिल गया, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इन फ्यूचर उसे मजबूरी में ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत ना पड़े। बस और कुछ नहीं कहना मुझे। नित्या ने तुमसे झूठ कहा, तुम्हें धोखे में रखा और तुम अभी भी उसकी भलाई सोचने का दिखावा कर रहे हो। इतना अच्छा बनकर क्या मिलेगा तुम्हें? कहीं मेरी बेटी को बहला फुसला कर उससे शादी करने के सपने तो नहीं देखने लगे? तंज कसा और जबड़े भींचते हुए उसे घूरा। अगर ऐसा कुछ सोच भी रहे हो तो याद रखो, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। नित्या की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। बाप हूं उसका, उसकी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने का हक है मुझे, और तुम उसके कुछ नहीं लगते, ना ही कभी बन सकते हो। अपनी औकात में रहो और भूल जाओ कि कभी नित्या से मिले थे। तुम उससे जितना दूर रहोगे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए उतना ही अच्छा होगा। साफ तौर पर वो धमकी दे रहे थे और अंदर जो हुआ उसके बाद मानव को अंदाजा हो गया था कि वो किस हद तक जा सकते हैं। उसके चेहरे को एक साया सा छूकर गुजरा। दिल में जो मोहब्बत की धीमी सी लौ जली थी वो बुझती हुई नजर आने लगी। उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान उभरी। औकात, सही कहा आपने, मेरी औकात नहीं कि नित्या के साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता जोड़ सकूं, और मैं अपनी औकात में रहकर सपने देखना पसंद करता हूं। जो कभी मेरा हो ही नहीं सकता उसके पीछे अपना वक्त और जज्बात बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है मुझे। नित्या को लेकर मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कभी होगा। मेरे लिए नित्या सिर्फ एक अजनबी है जो मुझे सड़क पर मिली, और उसकी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए मैं उसे अपने घर ले आया। अभी आपको जो बातें कहीं उसके पीछे मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। मैंने बस इंसानियत के नाते आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि नित्या एक लड़की है, आपका एक गलत कदम उसकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे मानना न मानना आप पर निर्भर करता है। आखिर नित्या आपकी बेटी है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो फर्क आपको पड़ना चाहिए। मेरे लिए वो कल भी अनजान थी, आज भी अनजान है और आगे भी अनजान ही रहेगी। गजब एटीट्यूड था उसका, क्या कॉन्फिडेंस था, मिस्टर शेरगिल बस देखते ही रह गए। मानव ने अपनी बात खत्म की, सरसरी नजर कार में बैठी नित्या पर डाली, जिसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया था लेकिन आंसुओं से भरी आंखों से वो उसे ही देख रही थी, और फिर चेहरा फेरते हुए तेज कदमों से घर के अंदर चला गया। दरवाजा भी बंद कर लिया और बिना एक सेकंड रुके सीधे अपने रूम में घुस गया। अनीता जी परेशान सी उसके पीछे जाने लगी, लेकिन मानव ने डोर बंद कर लिया। अनीता जी दरवाजे पर ठिठक कर रुक गईं। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब हो क्या गया और कैसे। कल तक सब ठीक था, वो खुश थी और नित्या को अपनी बहू बनाने के सपने देखा करती थी, लेकिन अब जैसे एक झटके में उनके सारे ख्वाब बिखर गए थे। उन्हें अब सबसे ज्यादा मानव की चिंता हो रही थी। गुस्से से भरे मिस्टर शेरगिल का खून खौल रहा था। वो अंदर बैठे ड्राइवर को चलने कहा और धूल उड़ाते हुए कार तेजी से वहां से निकल गई। नित्या सर पीछे घुमाए नम आंखों से मानव के घर को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज कोई नहीं था जो उसके आंसुओं से बेचैन हो, उन्हें प्यार से पूछे, अपने सीने से लगाकर उसे चुप करवाए। मानव की याद शिद्दत से आई और वो बुरी तरह बिफर पड़ी। मनु दरवाजा खोल बेटा, मुझे तेरी चिंता हो रही है, तू ठीक है ना बेटा, बाहर आ जा मनु। अनीता जी दरवाजे पर खड़ी मानव को आवाज लगा रही थी। अंदर सन्नाटा पसरा था, कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। वो दरवाजा पीटने वाली थी कि एकदम से दरवाजा खुल गया। अनीता जी की नजर मानव पर पड़ी और वो बुरी तरह चौंक गई। मानव ये क्या हुआ आई, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे कोई जिन देख लिया हो। आपका ही बेटा हूँ, अभी कुछ देर पहले ही देखा था आपने मुझे, शक्ल बदली तो नहीं है, कहीं आप इतनी सी देर में अपने इकलौते बेटे को भूल तो नहीं गई। मानव ने बहों उछालते हुए झूठी नाराजगी और हैरानी जाहिर की। अनीता जी को उसे देखकर हैरान थी, उसका अंदाज देखकर वो परेशान भी हो गई। उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगी। क्या हुआ आई, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, मानव मुस्कुराया। अनीता जी ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल और माथे को छुआ और चिंता भरी नजरों से देखते हुए बोली, मनु तू ठीक है ना। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आई, मुझे भला क्या होना है, मानव ने बेपरवाही से जवाब दिया।
देखकर लग तो नहीं रहा, अभी अभी इतना कुछ हो गया और तू इतना शांत है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो होना था हो गया और जो हुआ अच्छा ही हुआ। मानव, अनीता जी ने कुछ कहना चाहा लेकिन मानव ने उन्हें रोक दिया। आई मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुझसे बाद में बात करता हूँ, अच्छा अपना ख्याल रखना। मानव ने उन्हें हक किया और बोलने का मौका ना देते हुए तेजी से बाहर जाने लगा। आधे रास्ते पहुंचा ही था कि अनीता जी की आवाज उसके पैरों में बेड़ियां बनकर लिपट गई। वो जो खुद को नॉर्मल दिखा रहा था, उसके चेहरे पर बेबसी, दुख, अफसोस, नाराजगी जैसे कई भाव उभर आए। टू बी कंटिन्यूड।